हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। ऐसा कहकर वो जोरों से हंसने लगा था। अब रानी माँ का दिल और अंदेशों से भर उठा था। उन्हें समझ में नहीं आया कि वो बहुत जिन अंश की रक्षा करें तो करें कैसे। वहीं दूसरी ओर अमरेंद्र और करिश्मा जी दोनों ही कड़े तप में बैठ चुके थे, ताकि वो एक बार फिर जादुई शॉल का निर्माण कर सकें। लेकिन इतनी जल्दी जादुई शॉल का निर्माण नहीं होने वाला था, ये बात वो अच्छी तरह से जानते थे। वहीं दूसरी ओर रानी माँ के पास जिन अंश की रक्षा करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका था, और उसके लिए उसे अपनी बेटी सितारा परी की मदद चाहिए थी। और हालांकि सितारा परी ने उनसे माफ़ी मांगी थी और साथ ही साथ इस बात का यकीन दिलाया था कि वो अब बदल चुकी है, तो इसीलिए वो उसे अब उनकी मदद करना चाहती है, तो इसीलिए रानी माँ ने मजबूर होकर कारावास का दरवाज़ा खोल दिया था और सितारा परी से मदद मांगते हुए कहा था कि हम चाहते हैं कि तुम अपनी जादुई शक्ति के द्वारा एक जिन अंश की परछाई पैदा करो और उस राक्षस की नज़रों में उस जिन अंश का छलावा रखो, और अगर उस राक्षस का शस्त्र किसी पर हमला करे तो सिर्फ और सिर्फ उस परछाई पर करे, ताकि राक्षस को ये लगे कि जिन अंश का अंत हो चुका है। अब जैसे ही रानी परी ने ये कहा, सितारा परी ने अपनी तुरंत अपनी दोनों हाथों को जोड़ लिया था और कहने लगी थी, रानी माँ आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे एक मौका दिया और मुझे इस लायक समझा कि मैं जिन अंश की मदद कर सकूं। हाँ, मैं पहले में जिन अंश जान लेना चाहती थी, लेकिन उस वक्त मुझे पर उस राक्षस ने अपना वशीकरण किया था। उसने मेरे नफरत को अपने वश में कर लिया था, जिसकी बदौलत मैं उसके गुलाम बन चुकी थी। लेकिन अब मैं पूरी तरह से ठीक हो चुकी हूँ, और अगर आपको यकीन नहीं है तो बस आप मुझे एक मौका देकर देखिए। और जैसे कि आपने मुझे कहा है कि मैं जिन अंश को अपनी परछाई वाली जादुई शक्ति का प्रयोग करते हुए तराना के यानी कि जिन अंश की एक और परछाई क्रिएट करो, तो मैं वो काम जरूर कर दूंगी और उस राक्षस को कानो कान खबर भी नहीं होगी। अब जैसे ही तराना ने ये कहा, कहीं ना कहीं रानी माँ को उसकी बातों में सच्चाई नजर आने लगी थी। वैसे भी वो तराना को एकदम ठीक होते हुए देखना चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि वो राक्षस का शस्त्र उसे पर किसी भी तरह का प्रयोग करे। वैसे भी वो जिन्नातों की जादुई शॉल का अंत कर चुका था और अब उसके लिए तराना की जान लेना काफी ज्यादा आसान था, और रानी माँ किसी तरह का कोई रिस्क ना लेते हुए जल्दी ही उसको बचाने के बारे में सोचने लगी थी। तब रानी माँ ने अपनी कुछ जादुई शक्तियों के द्वारा एक बार फिर तराना के लिए एक बार फिर सितारा परी को पृथ्वीलोक पर भेजने का डिसीजन ले लिया था। कहीं ना कहीं वो थोड़ा थोड़ा डर भी रही थी कि न जाने अगर उस सितारा परी के अंदर थोड़ी बहुत भी बुराई होगी तो वो उसका गलत फायदा उठा सकती है। लेकिन अब रानी परी को कोई ना कोई रिस्क तो लेना ही था, इसीलिए उन्होंने मजबूर सितारा को अब पृथ्वीलोक पर भेज दिया था। वहीं दूसरी ओर तारा परी बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुकी थी, क्योंकि वो ये बात अच्छी तरह से समझ चुकी थी कि आज तो जैसे जैसे उसने अपनी जादुई परी वाली शक्ति का प्रयोग करते हुए अपनी बेटी को बचा लिया, किन कब तक वो उसे राक्षस की शक्तियों का मुकाबला कर पाएगी, क्योंकि उस राक्षस में कितनी सारी शक्तियां हैं ये बात तारा परी अच्छी तरह से जानती थी। तो इसीलिए वो मन ही मन में अब दुआ करने लगी थी कि जैसे तैसे बस ये 12 दिन गुजर जाएं और उसकी बेटी के अंदर ढेर सारी शक्तियां आ जाएं। उसके बाद उनकी सारी टेंशन खत्म होने वाली थी। वहीं अमन इसी बात की कश्मकश में था कि वो काली शक्तियों के महागुरु का मुकाबला नहीं कर पाया। अमन को तो यही लग रहा था कि काली शक्तियों ने उसकी बेटी पर हमला करवाया है और वो उनका मुकाबला नहीं कर पाया। एक जिन महाराज होते हुए भी वो शॉल जादुई शॉल को जलने से नहीं रोक पाया, तो कहीं ना कहीं अमन इस बात को लेकर काफी ज्यादा सोचने लगा था। वेल, अब क्योंकि उन सबको दादा महाराज के पास जाना ही था और वैसे भी अमन अब 21 वर्षों तक काली शक्तियों की गुलामी करने का फैसला ले चुका था, क्योंकि जब से उसने जादुई शॉल को अपनी आंखों के सामने जलते हुए देखा था तब से उसे बार बार यही लग रहा था कि काली शक्तियों का महागुरु सबसे ज्यादा शक्तिशाली है, तो इसीलिए वो सोच रहा था कि उसे 21 सालों की ही तो बात है। वैसे भी जिन्नातों की उम्र तो कम होती ही नहीं है, वो तो केवल जवान के जवान ही रहते हैं, ना तो वो बूढ़े होते हैं न ही वो मर सकते हैं, और ऐसे ही परियों का हिसाब है, ना तो प्रिया मर सकती हैं और न ही वो बूढ़ी हो सकती हैं। तो इसीलिए अमन ने सोचा केवल 21 वर्षों तक ही तो गुलामी करनी है, वो कर लेता है और उसके बाद उसकी बेटी हमेशा हमेशा के लिए काली शक्तियों के महागुरु से सेफ हो जाएगी। तो इस बात के बारे में वो सिर्फ दादा महाराज से डिस्कस करना चाहता था, साथ ही साथ तारा परी को भी बताना चाहता था, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी, क्योंकि अभी तो उसकी बेटी उसकी आंखों के सामने आई थी और इस तरह से वो अपनी बेटी को अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। कहीं ना कहीं वो अब अपने बच्चों को लेकर काफी ज्यादा परेशान हो चुका था। वहीं तारा परी के मन में भी सेम यही बात चल रही थी। फिलहाल अगली सुबह हो चुकी थी और अगली सुबह होने के बाद आज उस राक्षस के माने जल्द ही अपने उस शास्त्र को एक बार फिर एक्टिव कर दिया था कि वो जाए और जाकर जिन्नातों के वंशज का आज के आज ही अंत कर डालें। अब जैसे ही उसने ये हुक्म दिया, वो शस्त्र बड़े ही बुरी तरह से हंसते हुए कहने लगा था, बिल्कुल, आज जिन्नातों के वंशज का आखिरी वक्त है और आज के आज ही मैं जिन्नातों के वंशज की जान ले लूंगा। कहीं ना कहीं ये सोचते हुए वो भी अब जल्दी ही जिन्नातों के वंशज की जान लेने के लिए निकल चुका था। वहीं काली शक्तियों का महागुरु ये बात समझ चुका था कि जिन अंश पर हमला हुआ है, लेकिन वो हमला उसकी किसी काली शक्ति ने नहीं किया है। ये बात भी वो समझ चुका था, क्योंकि अगर कोई भी काली शक्ति जिन अंश पर हमला करती तो उसे इस बात के बारे में जरूर पता होता। तो कहीं ना कहीं वो अब इस बात के बारे में पता लगाने लगे थे कि आखिरकार की काली शक्ति ने या किस शक्ति ने जिन अंश पर हमला किया है। कहीं ना कहीं वो इस बात का अच्छी तरह से फायदा उठाने वाले थे और उससे दोस्ती करना चाहते थे, क्योंकि अगर जिन अंश पर हमला हुआ है तो किसी न किसी ताकतवर चीज ने ही किया है, वरना जादुई सॉल को जलाने की हिम्मत किसी भी आम इंसान में या आम शक्तियों में नहीं है। अब काली शक्तियों का महागुरु चाहता तो किसी और को भी जिन अंश को करने के लिए भेज सकता था। अमित के तो ऑलरेडी दो अंश थे, दोनों ही एक पेपर और एक बरगद के पेड़ में कड़ी तपस्या में लीन हो चुके थे। वहीं अब केवल अमित की माँ बची हुई थी। भले ही वो बदसूरत थी, लेकिन उसकी मौत नहीं आने वाली थी, क्योंकि उसने माँ शुरू से ही काली शक्तियों के साथ अपना जीवन बताया था। जब से उसकी सारी शक्तियां चली गई थी, तब से वो काफी ज्यादा बदसूरत हो गई थी। इसीलिए उसने सोचा कि उसे एक बार और कोशिश करके काली शक्तियों के महागुरु से मिलना चाहिए और उसे कहना चाहिए कि वो अपनी शक्तियां वापस पाना चाहती है। अगर वो उसकी शक्तियां लौटा देती है तो वो उसे अमित के एक और अंश के बारे में बता देगी। कहीं ना कहीं सब अपने प्लान के साथ तैयार थे। तारा को अपनी बेटी तराना को बचाने की जिद्दीजहद करनी थी। वो अमरेंद्र और करिश्मा जी दोनों ही कड़े तपने बैठ चुके थे, लेकिन इतनी आसानी से
उन्हें जादुई शाल नहीं मिलने वाला था, क्योंकि जादुई सोल बरसों पहले, जब जिस टाइम अमन पैदा हुआ था, अमन और अमन का जुड़वा भाई मान पैदा हुआ था, उस वक्त दादा महाराज ने अपनी कड़ी तपस्या के द्वारा पूरे 7 दिनों के अंदर उसे जादुई शाल का निर्माण किया था, जिससे कि उनके वंशज अमन बिल्कुल ठीक रह सकें, और उसे वक्त अमन की जान भी उन्होंने इस सोल का इस्तेमाल करके बचाई थी। लेकिन अब वो जादुई शॉल खत्म हो चुका था, क्योंकि जिन महाराज आपको समाधि में थे तो वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल जादुई शॉल का निर्माण में नहीं कर सकते थे। तो इसीलिए करिश्मा जी को ही अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करना था। इसके लिए उन्हें दादा महाराज के किसी अंश के साथ बैठना था, तो इसीलिए वो अपने पति अमरेंद्र जी के साथ बैठ गई थी और जल्दी ही उन्होंने कड़ा तप करना शुरू कर दिया था। लेकिन अब ये उनके तप के ऊपर डिपेंड था कि जादू स्टॉल का निर्माण अब होगा तो आखिरकार कब होगा। वहीं दूसरी ओर राक्षस का शस्त्र जल्दी ही अमन के बंगले में आ चुका था और अच्छी तरह से वो अब तराना को देखने लगा था, और तराना उसे वक्त तारापरी के कमरे में दिखाई दे गई थी। अब तो शस्त्र जोरों से हंसने लगा था, क्योंकि उसने तो सोचा था कि जिन अंश है उसके पास तो उसका जिन महाराज पिता अमन और साथ साथ तारापरी मौजूद होगी, लेकिन जिन अंश को तो उन्होंने अकेला छोड़ दिया था, तो कहीं ना कहीं उसे लगने लगा था कि आज तो वो जिन अंश का अंत करके रहेगा और उसे मारने के बाद बात ही वो परीलोक जाकर उस राक्षस को वहां से उठाकर लेकर आएगा। और जैसे ही उस राक्षस की मूर्छित अवस्था का टाइम पूरा होगा, उस वक्त तारापरी को वो उसके सामने लाकर खड़ा कर देगा। उसने ये सोच लिया था और जल्दी ही जाकर उसने जिन अंश जो कि बेड पर लेटी हुई थी उसका जाकर गला दबाना शुरू कर दिया था, और जल्दी ही जिन अंश की जान उसे शस्त्र की नज़रों में जा चुकी थी। जिन अंश की जान जाने के बाद वो बहुत ही जोरों से हंसने लगा था, और जिन अंश की डेड बॉडी को लेकर वो सीधा उस राक्षस की माँ के पास पहुँच चुका था, और वहाँ जाकर उसने जिन अंश की डेड बॉडी दिखाई दे रही थी। अब तो वो भी जोरों से हंसने लगी थी और कहने लगी थी कि मेरा इस पृथ्वी पर आने का मकसद पूरा हो चुका है, जिन अंश की जान जा चुकी है, और अब मुझे पूरी उम्मीद है जैसे ही मेरा बेटा मूर्छित अवस्था से बाहर आएगा तो वो तारापरी को वो सबक सिखाएगी जिसे मैं इतने सालों से सपना देखती हुई आई हूँ। कहीं ना कहीं ये सोचते हुए वो राक्षस की माँ वहाँ से गायब हो चुकी थी और उसका शस्त्र भी उसी के साथ गायब हो चुका था, और जिन अंश की बॉडी जो उन्होंने वहीं फेंक दी थी वो नीचे गिरते ही अचानक गायब हो गई थी, और उसके गायब होने के बाद सितारा परी जोरों से हंसने लगी थी, क्योंकि जिस जिन अंश की उन्होंने जान ली थी वो एक छलावा था जिसे सितारा परी ने अपनी जादुई शक्तियों का प्रयोग करते हुए परछाई के रूप में उनके सामने प्रकट किया था कि वो लोग जिन अंश के भ्रम में उसे परछाई की जान ले लें, और उन्होंने वैसा ही किया था। जिन अंश तो इस वक्त सुरक्षित अपनी माँ तारापरी के हाथों में मौजूद थी। तारापरी उसे एक मिनट के लिए भी अकेला नहीं छोड़ रही थी। वहीं रानी माँ अब एक बार फिर उस राक्षस के सामने मौजूद थी और कहने लगी थी, तुमने भले ही मेरे जिन अंश का अंत करवा दिया हो, लेकिन तुम याद रखना मेरी बेटी तारा तुम्हें किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेगी। अब जैसी रानी माँ ने थोड़े से एक्टिंग करते हुए इस तरह से कहा, और राक्षस जोरों से हंसने लगा था, क्योंकि रानी माँ ये बात अच्छी तरह से जानती थी कि अगर राक्षस को पता चल गया कि जिन अंश जिंदा है तो एक बार फिर वो उसकी जान लेने की कोशिश कर सकता है, तो क्यों ना राक्षस को इसी भ्रम में रखा जाए कि जिन अंश मर चुका है। जिन अंश के भ्रम में उसने परछाई की जान ले ली और उन्होंने वैसा ही किया था। तो क्यों ना राक्षस को इसी भ्रम में रखा जाए कि जिन्नंज मर चुका है। तो कहीं ना कहीं इस बात का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने राक्षस को ये खबर दे दी थी कि जिन्नंज मर चुका है। तो अब रानी माँ ने जैसे ही ये बताया तो अब वो राक्षस बहुत ही ज्यादा खुश हो चुका था और उसे हंसने लगा था। वहीं दूसरी ओर सितारा परी की परछाई के साथ वापस से परलोक में लौट आई थी। परलोक में लौट कर आने के बाद रानी माँ ने उसका दिल से स्वागत किया था और कहने लगी थी, मेरी बच्ची, अब मुझे इस बात का यकीन हो गया है कि तेरे अंदर से सारी बुराइयां खत्म हो चुकी हैं। इसीलिए अब मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ कि तुम नॉर्मल परियों की जिंदगी जी सकती हैं और तुझे कारावास में कैद नहीं होना पड़ेगा। जैसे ही रानी माँ ने ये कहा, सितारा परी बहुत ही ज्यादा खुश हो गई और उसने खुश होकर अपनी माँ को गले से लगा लिया था। वहीं दूसरी ओर अक्षत खुराना और सोनम परी दोनों दिन रात सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे का उपभोग करने में बिजी रहा करते थे, क्योंकि जब जब सोनल परी तारा और अमन को एक साथ इंटीमेट होते हुए देखा करती थी तब से उसे भी यही सब करने का बहुत ही ज्यादा दिल किया करता था। पर जब से उसे इंसानी जिंदगी मिली थी तब से वो अक्षत के साथ केवल न दिन देख रही थी, वो रात देख रही थी। वो और दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर कितनी ही देर तक उपभोग करते रहते थे। और तभी